सुनी कहीं से जब लौट रहे थे। सुनते ही भीम और अर्जुन दोनों रथ पर सवार होकर के उसके पीछा किया। जब देखा कि अरे ये दोनों आ रहे हैं, बड़ी जोर से रथ भगाया। भीम ने कहा जा अच्छा ठहरो, तो पकड़ में नहीं आएगा, रथ से कूद करके और दौड़े तो समझे जी रथ से भी अधिक भीम दौड़ने में तेज हैं। और एकदम गए, इतने में अर्जुन ने वहीं से बैठे बैठे बाण चलाया, एकदम अग्नि बाण चलाया, जिससे कि चारों तरफ में आगे सामने में आग लग गई, इसका रथ जा नहीं सकता। इधर भीम ने दौड़ करके उसको पीछे से पकड़ लिया, दो चार गुलचे थप्पड़ लगाए और ले करके आए अर्जुन के यहाँ। अर्जुन भी उसको पकड़ करके रथ में बांध करके ले आए द्रौपदी के यहाँ। महाराज युधिष्ठिर के दरबार में उनको हाजिर किया, कहा द्रौपदी के चरणों में तुम गिरो। और वो गिरने लगा, गिर गिराने लगा, दांत गिर गिराने लगा, हाथ जोड़ने लगा। अर्जुन ने कहा कि हमने प्रतिज्ञा की है इसको मारेंगे, इसका वध करेंगे जो इसका अपमान किया है। कृष्ण ने कहा कि इसको मारना ही जान से अच्छा है, इसको छोड़ना नहीं है, ये आत्मताई है, इसलिए इसको मारना अच्छा है। भीम ने कहा इसको जरूर मारना है। युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा कि भाई मारने से पहले जरा द्रौपदी से परामर्श कर लो क्या करेंगे। तब द्रौपदी के यहाँ पूछने के लिए जब वहां पर पूछा तो द्रौपदी ने कहा ये जानते हो हमारी ननद का ये स्थान है, बतलाओ यदि तुम लोगों को यदि वध कर दिया जाए तो हमारी क्या गति, हमें विधवा हो जाऊंगी, तो तुम चाहते हैं कि ये तुम्हारी बहन विधवा हो जाए, तो ये तो नहीं। अंत में सब लोगों ने कहा अच्छा इसको मारना भी जरूरी है, वध करना जरूरी है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा इधर द्रौपदी कर ये वध नहीं करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। कृष्ण ने कहा जाए देखो भाई सत्य का निर्णय ऐसे नहीं होता है, सत्य की सत्य जो है वो कहाँ रहता है, परम गुहा में रहता है, इसको सत्य को समझना बड़ा भारी कठिन है। अभी हम पूछेंगे जी आपका नाम क्या है, आप कहेंगे रामचंद्र, आप कहेंगे अपना नाम, ये सब असत्य है, ये तो शरीर का नाम है, मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण कहां से आया, तुम आत्मा हो, तुम्हारा ये घर है ये झूठ है, ये मेरा मंदिर है सब झूठा, ये शरीर मेरा है, ये बेटा मेरा, ये सब कुछ झूठा है, सत्य क्या है, मैं भगवान का दास, मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममैवांशो जीव लोके जीव होता, यही परम सत्य है और बाकी सब झूठ है। गीता महाभारत के शांति पर मैं सत्य की परिभाषा उन्होंने दी है, ये बहुत लंबी चौड़ी कथा हो जाएगी। तो सत्य क्या चीज है, एकमात्र भगवान सत्य है, उनका नाम सत्य इस जगत में है, जीवात्मा सत्य है, ये तो पीछे की किंतु नाम ही सत्य है और बाकी सब ये मिथ्या देह अपना। समझाने के बाद में उन्होंने कहा अच्छा ऐसा बात करो, इसके सिर पर पांच चोटी रखो कमा करके, लंबी चौड़ी रास्ता चारों तरफ से पगडंडी बना दो और मुझ को ये आधा कमा दो, आधा रहेगी, और दाढ़ी को भी आधा कमा दो, सिर का पीछे से मुंडन कर देना। तो सिर मुंडन करके दाढ़ी कौन रखता है, हम लोग दाढ़ी मुंडन करके सिर पर चोटी रखते हैं ना, और केस इसके ठीक विपरीत कौन करता है, वो दाढ़ी रखते हैं और सिर का मुंडन कर लेते हैं। हम लोग इसको मुंडन करते हैं, ठीक मुसलमानों जैसे उनकी दशा बना करके अपमानित करके वो ग्लानी में भरता हुआ यहाँ से फिर चला गया। इसी तरह से यहाँ पर पांडवों से पांडव लोग जब आए यहीं पर पासी में जैसे वो बतला रहे थे, इनको बड़ी भारी प्यास लगी, बहुत जोर से प्यास, कहीं पानी नहीं, खोजते खोजते उन्होंने कहा जी जाओ नकुल पता लगाओ पानी कहाँ, ले आओ। नकुल गए एक सरोवर पर, उनको पानी बहुत निर्मल मिला और उसी समय में पानी मिलने पर बहुत रात हो गई, कितना बज गया, तो ठीक है आप बहुत लोग प्लान करेंगे इसकी कथा, हम लोग वहां पर सुना वहां पर हम लोग सुनाएंगे इसकी और भी सब कथाएं सुनाएंगे। आज यहीं तक कथा मैं समाप्त करता हूं। कल हम लोग सवेरे आप लोग तैयार हो जाएंगे, यहां पर पाठ प्रवचन करेंगे, वो जैसा हम लोग पाठ प्रवचन करते हैं। इसके बाद में 6:30 में 7:15 में यहां से हम लोग निकलेंगे, बिंदा देवी और कामेश्वर इत्यादि का दर्शन करेंगे। हो सकता है कि मदन मोहन और 84 खंभा भी हो जाए, ये दर्शन करके हम लोग फिर लौट आए। इसके बाद में 3 बजे यहाँ से हम लोग जाते हैं। आप लोग वैसे ही तैयार हैं। महामंत्र कर उसको लगा देने के लिए।
सबसे बड़ी बेटी
उन विमल जी थे तीर्थराज, जिनकी ये सब लड़कियां थी, वही सबसे बड़ी हैं। ये बिमला देवी जी का शिव मंदिर है और उनकी शिव विग्रह है। आप लोग यहाँ से प्रणाम करके तब हम लोग यात्रा करेंगे। दिखाई नहीं पड़ रहा है।
गौर प्रमानंदे
यहाँ पर काशी से बड़े कष्ट करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक समय की बात है, एक मिनट बैठ जाओ, सब सुनो अच्छी तरह। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था, वो जगन्नाथ जी के यहाँ रोज जाता था और प्रणाम करता था। मुद्दा जी, प्रभु हमारी एक अभिलाषा है, आप हमको काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करा दें।
जगन्नाथ जी के यहाँ जाते,
जगन्नाथ जी के यहाँ रोज ऐसे ही प्रार्थना करता। जगन्नाथ जी ने कहा, जी अच्छी बात है, तुम वृद्ध हो गया, जा नहीं सकता, एक बात करो, गेट पर एक बहुत ही वृद्ध ब्राह्मण है सिंह दरवाजे के पास में, वो काशी जाने की बात कह रहा था, तो उसके साथ में ना हो तो चला जाना, जाओ पूछा उसमें ये कब जाएगा, क्या करेगा, उसका परिचय ले आओ। बहुत ही प्रसन्न हुआ वो ब्राह्मण, कहा जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा हो गई, अब मैं जाकर के विश्वनाथ जी का दर्शन करूंगा। तो गया, उनको देखा, जैसे एक वृद्ध वैष्णव है, ब्राह्मण है, पर सुंदर सुकांत है, दिव्य उसके चेहरे हैं, किंतु वृद्ध है। उन्हें उनको प्रणाम किया, महाराज आप काशी विश्वनाथ काशी जी जाएंगे? जैसे तुम कैसे जाना? तो हमको पता लगा, जगन्नाथ जी ने हमको कहा है, जो उस ब्राह्मण के साथ में जब जाओ तो उसके साथ में चला जाना। अरे दुर्भागा, मैं काशी छोड़ करके यहाँ आया इनको दर्शन करने के लिए, और तू ऐसा दुर्भागा जो जगन्नाथ जी को छोड़ करके काशी में जाएगा? अरे उनके तो ये आराध्य हैं, शंकर जी क्या करते हैं राम के यहाँ, देखो यही कहते हैं, बार बार बर मांगे ऊ हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग, ये मांगते हैं, उनके चरणों की सेवा मांगते हैं, गोपीश्वर बन करके शंकर जी उनकी आराधना करते हैं। इसी तरह से हम लोग यहाँ आए, वैष्णव में शंभु सबसे श्रेष्ठ हैं, कृष्ण के तत्व को जानने वाले हैं, वृंदावन के तत्व को, ब्रजमंडल का, काम्य वन का, सबका तत्व वो जानने वाले हैं। मैं आया इसलिए इनको प्रणाम भी करूंगा, पूछूंगा, आज आपको काशी में अच्छा लगता था ना यहाँ पर अच्छा लगता है? इसलिए पूछने के लिए, कहाँ आपको मन लगता है? तभी मैंने पूछा तो मन ही मन में उन्होंने बतला दिया हमको। हमको कभी इच्छा ही नहीं होती है कि मैं लौट करके काशी में जाऊं। अब तो मैं यहीं पर रम गया हूं, अब मैं नहीं जाता। यदि प्रभु भी आदेश देंगे तो उनके चरणों की सेवा छोड़ करके मैं बिमला कुंड में स्नान करूंगा और स्नान करके यहीं पर उनका ध्यान करूंगा और उनकी लीलाओं में मस्त हूं। बोलो काशी विश्वनाथ गौर प्रेमानंदे।
हरि हरि बोल।
ये ब्रज की रहने वाली और इनकी शादी हुई है वृंदावन में, इनके पति वृंदावन में रहते हैं, गोप हैं, ये गोपी हैं, राधा जी की बड़ी प्रिय सहेली हैं। इनके संबंध में हम लोग नीचे बतलाएंगे, आप लोग इनको प्रणाम करें और जहाँ जाएंगे कम से कम कुछ जरूर प्रणामी देंगे। जहाँ जिस मंदिर में जाएंगे खाली हाथ मत, इधर उधर तो रुपया खर्च होगा ही अपने लिए, अपने लिए इतना रुपया खर्चा होता है तो ठाकुर जी की सेवा में कुछ जाना चाहिए। एंड वे आर गोइंग गिव प्रणामी दे आर श्योरली, इफ इट इज वेरी लिटिल बट येट विल हैव टू बी। यहाँ पर राधा जी हैं, गोविंद जी हैं और ललिता देवी जी हैं। आप लोग इनको प्रणाम करके तब फिर इधर आइए।
কর্পূর তাম্বুলে ঘরে তুলিয়া দিব কুকুরা তাম্বুলে, ললিতা বিশাখায়া দি যত সখী বৃন্দ, ললিতা বিশাখায়া দি যত সখী বৃন্দ, আজয় করিব সেবা চরণ অরবিন্দ, আজয় করিব সেবা চরণ অরবিন্দ, বাবা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস, সেবায় অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস, সেবায় অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস, জয় রাধে জয় রাধে
में बन की परिक्रमा के में निकले हैं। कल हम लोगों ने गोपीनाथ जी का दर्शन किया, आज हम गोविंद जी का भी दर्शन कर रहे हैं, इसके बाद में मदन मोहन। नियम तो ऐसा ही होना चाहिए कि पहले मदन मोहन जी का हो और इसके बाद में गोविंद जी का, इसके बाद में गोपीनाथ, किंतु हम लोगों का ऐसा ही हुआ। पहले चरण का दर्शन, इसके बाद में कमर का, वस्त्रक्षल का, इसके बाद में मुखारविंद का। हम लोगों ने पहले ही मुखारविंद दर्शन किया, इसके बाद में कमर, इसके बाद में वस्त्रक्षल, इसके बाद में जैसी प्रभु की इच्छा। हम लोग अभी वृंदा देवी के मंदिर में आए हैं। वृंदा देवी के नाम से प्रसिद्ध है, किंतु है मंदिर राधा जी का और गोविंद जी का, राधा गोविंद जी का, किंतु वृंदावन की, वृंदा देवी की कुछ विशेष महिमा है। ये वृंदा देवी मूलतः ये वृंदावन में रहती हैं। यहाँ पर सेवा कुंज है, यहाँ पर रूप गोस्वामी भजन करते थे, यहाँ बंसी भट है, यहाँ निधुवन है, राधा कृष्ण का नित्य मिलन होता है, वहीं पर इनकी शादी है। राधिका जी का विवाह सुनते हैं जावट में है, ललिता जी, विशाखा इत्यादि जी का सब वहीं पर, रूप मंजर जी भी की शादी वो जावट में है, वो सब सखियां वहीं पर उनकी सेवा करती हैं और सब समय राधा जी के भाव में विभावित रहती हैं, उनकी कृष्ण से मिलन कराती हैं। अब वृंदा जी वृंदावन में उनकी शादी हुई है। शादी माने ये सब जोग माया के द्वारा, ऐसा अभिमान केवल है, किसी दूसरे के साथ में शादी नहीं है, अभिमान केवल। सब गोपियों का एक ही समान, कृष्ण की भी ऐसी ही। तो काय विवह है राधा जी की, और जो आप तुलसी के रूप में देखते हैं वो ऐसे ही है जैसे कृष्ण के से नारायण निकले हैं, प्रकाश हैं, ऐसे राधा जी की ही एक मैनिफेस्टेशन, उन्हीं के एक प्रकाश विग्रह ये तुलसी जी हैं। तुलसी
बिन्ना देवी का मैनिफेस्टेशन राधा जी को,
बिन्दा देवी का। वैसे जैसे कृष्ण से नारायण हुए हैं, ऐसे वृंदा देवी से ये तुलसी हुई। नारायण जी हो गए शिला शालग्राम, किस लिए? जगत पर कृपा करने के लिए, सरल साज रूप में सबको मिल सके। उसी तरह से ये तुलसी जी उनकी प्रिया है, वैकुंठेश्वरी हैं, और वो वृक्ष का रूप धारण कर लिया। ये सहज सरल रूप में सबकी सेवा वो ग्रहण करके जगत के जीव का निस्तार कर सके। वृंदा जी सब समय वृंदावन में ही रहती हैं और राधा कृष्ण का नित्य मिलन कराती हैं। उनकी कोई एक ऐसी लीला नहीं है जिसमें वृंदा देवी परोक्ष प्रत्यक्ष रूप में उनकी सहायता न करने वाली। यहाँ तक कि वो सखी होकर के भी दूती भी होती हैं, इसलिए वृंदा जी को दूती भी कहते हैं। कभी कभी ललिता जी भी दूती हो जाती हैं, यहाँ तक कि कभी कभी स्वयं राधिका जी भी दूती हो जाती हैं। दूती किस लिए? सब सखियों के साथ में मिलन कराने के लिए तो वो दूती बन जाती हैं। दूतियों में बहुत तरह की दूती है, एक स्वयं दूती है और एक आप्त दूती। स्वयं दूती कृष्ण ही स्वयं है, राधिका जी स्वयं है, उनके नेत्र इत्यादि के द्वारा ये सब। और एक होता है आप्त दूति माने क्या?
अत्यंत निकट,
उसमें बीरा वृंदा, बीरा वृंदा और
बीरा वृंदा दोनों प्रधान है।
बीरा वृंदा और एक और है वृंदारिका, ये सब प्रधान है। सुबल भी उसमें है दूतों में। बंसी अपनी एक खास दूती है। इस तरह से बहुत से दूतियों में ये वृंदा जी सबसे श्रेष्ठ हैं।
दूती का नष्ट
विशेष करके हम देखते हैं कि जब राधा कृष्ण का मिलन होता है, विशेष करके अभिसार इत्यादि करती हैं, उसमें वृंदा जी की अधिक प्रधानता रहती है। निशांत लीला में भी राधा कृष्ण सोए हैं, वृंदा जी सब पक्षियों को इंगित करती हैं कि राधा कृष्ण को अब जगाना चाहिए। उन्हीं के सहारे से सुंदर हवा बहने लगती है और वो वृंदावन के सुंदर कुसुमों के सुगंध को लेकर और भौरों के कान में जाती हैं, नाक में, और वो वहाँ से निकल करके गुंजार करने लगते हैं। कोयल के नाक में जाती है हवा, कोयल और कोयली दोनों उठ जाते हैं और कुहू कुहू कर करके उनको जगाते हैं। मयूर और मयूरी के भी हृदय में प्रवेश करा करके प्रेरणा दे करके के का ये शब्द कराती हैं। उसे भी नहीं होता तो ताम्रचूर कौन है जिसके ऊपर में लाल लाल रहता है, वो
मुर्गा
कहते हैं बंगला उर्दू में, और हम लोग के हिंदी में है ताम्रचूर।
ताम्रचूर
वही हिंदी में भी बंगला में भी
ताम्रचूर।
तांबा का जैसा रंग यहाँ पर है और वो वेद पाठ करती है। छात्र लोग सवेरे वो लोग वेद पाठ करते हैं, हर्ष स्वर से, मध्य स्वर से, प्लुत स्वर से, और ये भी खूब जोर से अपने पंखों को हिला करके दो पैर पर खड़े हो करके और कु 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 एकदम ऐसे आवाज करते जैसे कि कृष्ण स्वर। इस पर भी यदि नहीं उठते सुख सारी का चलता है परस्पर। सुख कृष्ण को उठा रहा है कौन? दक्ष
विचक्षण
और
सुभा
सूक्ष्मदी और मंजुभाषिनी, ऐसी सब सारियां उनको जगाती हैं तरह तरह से कह करके। इस प्रकार से वृंदा देवी के इंगित से ही सब कुछ होता है और अंत में जब नहीं होता तो एक कखटी बूढ़ी बंदरी वो जटिला जटिला ज्यों ही कहती हैं बस इनकी लीला भंग हो जाती है। इस प्रकार से उनका मिलन कराती हैं, अभिसार कराती हैं, तरह तरह लीलाओं का सृजन करती हैं, दोनों को आनंद से मिलन कराती हैं। इसलिए वृंदा जी के नाम पर ही ये वृंदावन हुआ, ये सारा साम्राज्य वृंदा देवी का था। वो बहुत ही सुंदर इसको रखती हैं उनके लीला के अनुकूल। इन्होंने पीछे से ये सब सारा राज्य दे दिया श्रीमती राधिका जी को, तब से ये वृंदावनेश्वरी हो गई। और राधा जी के संबंध से कृष्ण को भी वृंदावनेश्वर कहते हैं। इस तरह से यह वृंदा जी का बहुत महत्व है। 84 कोस की भूमि, जितने वन, जितने जो कुछ है, सबकी अधीश्वरी ये वृंदा जी थी, उन्होंने राधिका जी को दिया। इस तरह से जब कलयुग आया तो कलयुग के पहले चरण में गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन, ये सब विग्रहों की विग्रह प्रकाशित हुए। पीछे से उनके साथ साथ में राधा जी भी प्रकाशित हुई। तो राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन हैं तो सब समय उन्हीं के साथ में, किंतु कभी बिछड़न, कभी विरह, कभी मिलन होता है। राधा जी चली गई थी जगन्नाथपुरी में, वहां से पीछे से हमारे गोस्वामियों के प्रयत्न से फिर यहाँ पर आई और जन्नमा देवी खोद विग्रह को प्रकाशित किया राधा जी का, और उनके बाएं तरफ में सर्वत्र ये रखे गए। कालांतर में कुछ औरंगजेब आया और जयपुर के नरेश से उसकी वाद विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। उन्होंने शिवाजी को, जयपुर नरेश ने शिवाजी को मदद देकर के अपने जेलखाने से छुड़ा दिया। इस पर वो बिगड़ गया और जयपुर के द्वारा जितने भी निर्मित मंदिर इत्यादि थे उनको वो ध्वंस करने लग गया। उस समय में वृंदावन के जितने भी मंदिर में शिव विग्रह थे वो सब लोगों को जयपुर नरेश मान सिंह ने अपने रथ में बिठा करके और वहां से लेकर के सबको चले आए, जैसे ये मंदिर जरूर तोड़ेगा बदमाश, इसलिए वो सबको ले लिया। लेकर के पहला पड़ाव राधा कुंड में, वहां पर गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन जी हैं, और दूसरा पड़ाव में दीक से होते हुए यहाँ पर आए, यहाँ पर उन्होंने रखा। यहाँ पर आने के बाद में तब फिर यहाँ से जयपुर के लिए ले जाने लगे। वृंदा जी यहाँ तक आई, अब बोली ये बॉर्डर से मैं, अब वृंदावन से मैं दूसरी जगह नहीं जाऊंगी, बस इसलिए वहां नहीं गई, इसलिए इनकी यहाँ पर प्रधानता है, वृंदा जी नहीं गई। जब वो फिर लौट करके आएंगे तब फिर मैं वृंदावन जाऊंगी। अब जितने भी मंदिर है इधर में ब्रज में, यहाँ पर भी ये सब प्रतिभू विग्रह है। प्रतिभू माने क्या? प्रतिनिधि। जैसे रसस्थली में कौन कृष्ण प्रधान थे, जो मूल थे ना पीछे वाले जो बने, सभी मूल हैं। ऐसे ये मत समझिए जैसे वृंदावन में यहाँ से वृंदावन से चले आया है गोविंद, गोपीनाथ, राधा जी, वृंदा जी, और फिर यहाँ आए, यहाँ से भी जयपुर चले गए, कोई नाथद्वार चला गया, कोई करौली चला गया, या ऐसा मत समझेंगे। वृंदावनम प्रत्यज पाद एकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर के कहीं नहीं जाते वो, जहाँ जाते हैं वहां पर वृंदावन। तो इसलिए वहां पर जो मूल विग्रह है और जो वृंदावन में पृथ्वी विग्रह है, राधा कुंड में जो मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ हैं, यहाँ पर जो है गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन सभी ही वो नित्य है और प्रमुख है, इसमें कोई गौण और मुख्य नहीं है, केवल समझने का फेर है। इस तरह से ये वृंदा जी में हम लोग आए हैं। पहले वृंदा जी का दर्शन किया, इसके बाद में गोविंद जी का, राधा गोविंद जी का, और फिर मैम हम लोगों ने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के साथ में जगन्नाथ जी का दर्शन किया। जगन्नाथ जी यहाँ पर क्यों आए? एक तरह से ये द्वारकाधीश हैं और ये देवकी नंदन हैं, किंतु महाप्रभु जी को कुछ लीला करना पड़ा, राधा भाव में आविष्ट होकर के ये जगन्नाथपुरी में गए। क्यों गए? वृंदावन आने की तैयारी थी, किंतु नित्यानंद प्रभु जी ने उनको बहका करके और जगन्नाथपुरी में ले गए। सची मैया ने भी ऐसी प्रार्थना, क्यों बहकाया? आ रहे थे वृंदावन में, देखा जैसे यदि वृंदावन में जाएंगे इनकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी, राधा भाव का आस्वादन नहीं कर सकेंगे, उनकी मध्यमाओं का आस्वादन नहीं कर सके। क्यों? वहां जाएंगे और देखेंगे गोवर्धन को, देखेंगे कालिंदी को, देखेंगे वृंदावन को, और अपनी लीलाओं के स्थान को देख करके इनको आविष्ट हो जाएगा, ये कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाएंगे, बस लीला नहीं होगी। इसलिए वहां नहीं जाकर के नित्यानंद प्रभु ने इधर से घुमा करके, वो गुरु तत्व है ना, इसलिए उनको जगन्नाथपुरी मिला है। किस लिए जगन्नाथपुरी में ले आए? इसलिए कि वहाँ के वैभव में पड़े रहेंगे और वहाँ पर फिर अनुभव करेंगे विरह उस कंदरे में, कंदरा माने गंभीर में। यहाँ आएंगे राधा कुंड जाएंगे, देखेंगे ये राधा जी ही हैं। बरसाना में जाएंगे देखेंगे ये राधा जी हैं। भांडीर वन में जाएंगे देखेंगे राधा जी हैं। फिर वहां पर जाएंगे जावट में देखेंगे, कोकिला वन में सर्वत्र ही राधा कृष्ण की स्फूर्ति उनकी होगी, जब मैं कृष्ण हूँ और ये राधा जी हैं। किंतु वहां पर जाने में ये सब स्फूर्ति नहीं होगी और वो राधा भाव में डूब कर कृष्ण का ही, अपने का ही, अपनी माधुरी को आस्वादन करेंगे। इसलिए नित्यानंद प्रभु जी ने उनको बहका करके देखा, जिनकी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी राधा भाव की, इसमें नहीं आएगा, इसलिए उनको वहां पर भेज दिया। तब फिर वो जगन्नाथपुरी में रहने लगे। यहाँ आए तो दो एक दिन में ही अत्यंत चंचल हो गए और उनका कृष्ण भाव प्रदीप्त होने लगा। अब दो एक दिन रहते तो मालूम हो जाता जी यही कृष्ण है, इसलिए फिर जल्दी से जल्दी फिर वहां का लेकर के चले गए। आज हम गोविंद जी के और बिंदा जी के मंदिर में आए हैं, काम्य वन में आए हैं। हम उनसे प्रार्थना करें, इस बिंदा देवी से क्या प्रार्थना करें? भक्त्या विहीना अपराध लब्धे क्षेत्राज्य कामादितरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दम्। बिंदा जी के चरण में हम यही प्रार्थना करते हैं, अपने जो प्राण धन है, जुगल किशोर है, इन जुगल किशोर के चरणों में सदा के लिए हमारी भक्ति हो, विशेष करके राधा जी के चरणों में विशेष हमारी भक्ति हो। राधा जी की प्रिय सहेली है ये, इसलिए हमारे ऊपर में कृपा करें, काम बन में हमारी ये कामना पूर्ण हो, राधा जी की पाल्य दासी के रूप में जो हमारा आचार्य वर्गों की अभिलाषा है ये हमारी। यही कह करके हम वक्तव्य समाप्त करते हैं। अब यहाँ से हम लोग धीरे धीरे पंडा जी के साथ में चलेंगे कामेश्वर। यदि यहाँ से आप लोग यदि जा सकते हैं तो 84 खंभा और मदन मोहन का मंदिर, यहाँ से थोड़े आगे जा करके जाना पड़ेगा, और जो इतना नहीं चल सकते हैं वो यहाँ से धीरे 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 हमारे साथ में, मैं भी नहीं चल सकता, इसलिए हमारे साथ साथ में आप कामेश्वर मंदिर में चलेंगे, वहीं पर धर्मराज इत्यादि का आख्यान है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे, और ब्रह्मचारी लोग सब और नवयुवक नवज्योतियाँ ये सब लोग तेजी से जा करके यदि चाहें तो मदन मोहन जी और 84 खंभा दर्शन करके आए और हम वहीं पर मिल जाएंगे कामेश्वर में, फिर कामेश्वर से हम लोग लौट आएंगे। गौ परमानंदे बड़े बड़े मंदिर विशाल विशाल मंदिर, किंतु आज विशाल मंदिर भी कहीं कहीं पर गिर रहे हैं, पर नए नए सुंदर सुंदर सब मंदिर भी बन रहे हैं। इसको का देखिए कितना सुंदर विशाल मंदिर, पहले गोविंद गोपीनाथ मदनमोहन का वृंदावन में बड़ा बड़ा मंदिर था, आज वो भी गिरने लग गए हैं। राधा दामोदर जी का आधा गिर चुका है, मदन मोहन जी का भी आधा गिर गया, बाके बिहारी जी का देखिए कैसा उत्कर्ष हो रहा है, ये बीच बीच में ऐसा ही होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गरीब ब्राह्मण के घर में सेवा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा मंदिर और ये सब कुछ विचार नहीं, यहाँ पर प्रेम है वहाँ पर रहते हैं, किसी के हृदय में रहते हैं, किसी के देखिए टूटे फूटे घर में। अभी हम लोग आए थे कुछ दिन पहले तो ये टूटा, ये और भी टूटा फूटा था
92 में,
उससे पहले और भी टूटा फूटा था, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर हम लोग, अब तो कुछ सुधर भी गया है और शायद मंदिर का प्रूफ धीरे धीरे यहाँ पर भी ले लेगा। ये लोग बड़ी सेवा करने वाले लोग हैं, बहुत से लोगों ने इनसे मांगा जी आप अपने ठाकुर जी को दे दीजिए, हम लोग मंदिर बनाएंगे खूब अच्छी तरह से, नहीं जो हम सूखी रोटी बेझर की रोटी खिलाएंगे ठाकुर जी को नहीं देंगे, तो इसी तरह से सेवा होनी चाहिए। आज यहाँ पर देखिए कैसे पेनीलेस के रूप में होकर के और यहाँ पर सेवा ग्रहण कर रहे हैं, और हो सकता है बड़े बड़े मंदिरों में इतना प्रेम ना हो, कहीं पर नमक मांग रहे हैं ये मदन मोहन जी, और कहीं पर देखिए ये कैसे कैसे हो रहे हैं। जगन्नाथ जी में श्री नाथ जी में कैसी सेवा सब हो, किंतु मैं समझता हूँ कि वो ऊपर की सेवा है। 250 से सेवा हो, यदि उसमें प्रेम नहीं है तो उस सेवा का कोई भी मूल्य नहीं, और यदि प्रेम है तो बेझर की रोटी नहीं उसी सेवा न रहे, केवल लंगोटी पहना दिया और उनकी सेवा करें तो उसी सेवा से अत्यंत वशीभूत हो जाते हैं। हम लोग भी वैसे ही सेवा करने की चेष्टा करें। गौर प्रमानंदे।
तो जो कितना खंबा है चौरासी, जाओ बड़े बड़े पंडित लोग तुम जाओ सजना तो, और तुम गिन नाटका से जल्दी आओ, गिन करके आओ तो जल्दी से
नाम आ रहा
है राज सिंहासन यहीं पर बैठ करके और शासन करते थे। ये सब बैठते थे सब लोग, सभा सब लोग, कृष्ण भी बैठते थे और पांचों पांडव लोग बैठते थे, हम में ऋषि बैठते थे
उस तरफ देखिए उधर ऊंचा है,
ऐसा ही एक यहाँ पर भी था। और ये पहले जाली लगी हुई थी सब, जैसे दिल्ली में है ना, देखा किला के भीतर में
इंद्रप्रस्थ में,
यहाँ पर अकबर बैठता था, मुगल बैठता
दीवानी खास
में, ये सब इन्हीं सब का नकल उन लोगों ने बनाया। हिंदुओं का ही था वो, ये सब मुसलमानों की थोड़े हो सकता है, ये सब चित्रकारी सब देवताओं का, ये सूर्य है पनबास में यहाँ आए
और दरबार साधा
और यहीं पर दरबार होता था
पांडव लोगों का,
पांडव और दुर्वासा जी जब आए तो उस समय माहौल नहीं था, पीछे से ये बनाया, नहीं तो फिर द्रौपदी जी का उसमें
बंपर में आए
तो साथ कैसे था, यदि यहाँ इतना बड़ा भारी माहौल तो फिर ये गड़बड़ हो जाता, उलट फिर हो जाएगी, इसलिए ऐसा उसके बाद में बना है। ये इन्होंने ये बनाया परीक्षित महाराज जी ने पांडवों के जाने के बाद में उनकी स्मृति रक्षा करने के लिए बनाया था। यहीं पर पंडा जी को अब हम लोग दोपहर में जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा प्रणामी यहीं पर दे दीजिए, पे सम दक्षिणा टू पंडा जी बिकॉज ही इज मूविंग, ही इज ट्रैवलिंग विद अस फॉर टू डे। सुभद्रा जी हैं, है ना, और सुभद्रा जी से अर्जुन की शादी हुई और द्रौपदी जी एक तरफ में है, किंतु ये लोग प्यार किसको अधिक करते हैं, द्रौपदी को अर्जुन प्यार करते हैं अधिक ना सुभद्रा जी को, द्रौपदी जी को करते हैं। ये अपनी बहन खास हैं सुभद्रा जी, उसको कभी सखी सहेली प्रिय सखी कहते हैं, और जैसे मधुर से प्रेम से मिलते हैं द्रौपदी जी से वो मिलते हैं उनसे सुभद्रा जी से, यहाँ तक कि कृष्ण जितने प्यार से वो सत्यभामा और रुक्मिणी से मिलते हैं हम समझते हैं कि उनसे कम नहीं, ऊपर से तो देखने से ऐसा ही प्रतीत होता है कि शायद उन लोगों से भी अधिक प्यार करते हैं सुभद्रा जी को, बड़े प्रेम से मिलते हैं। जहाँ जहाँ पुकारती हैं द्रौपदी जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। क्यों ऐसा है? देखो एक और विशेषता, रामचंद्र जी के सीता को हरण करके ले गया रावण, ले गया ना, और अपने महल में जबरदस्ती अशोक वाटिका में उनको 90 दिन या और अधिक कुछ वहां पर रखा। इसलिए रामचंद्र जी ने तो वहीं पर उनको विदाई दे दिया, अब तुम हमारे साथ में नहीं रह सकती क्योंकि रावण तुमको हरण करके ले गया था, तुम्हारे ऊपर में अब तुम अशुद्ध हो गई, यही तो भाव। और यदि किसी प्रकार से देवताओं के कहने से भी रखा तो अयोध्या में जा करके कुछ दिनों के बाद में सदा के लिए प्रत्याग कर दिया। फिर एक धोबी के, धोबी नहीं और भी सब लोग थे, अजय ये सीता जी वहां पर थी, इधर सुनो, तो सीता जी वहां पर थी, कोई विश्वास नहीं ये क्या है नहीं है, सीता जी के बातों पर विश्वास नहीं किया, ब्रह्मा जी बोले, पवन बोले, अग्नि बोले, तभी नहीं विश्वास किया। और धोबी इत्यादि के कहने से, दूषित लोग कहने से, असत लोग कहने से रामचंद्र जी ने पर विश्वास करके सीता जी को आजीवन त्याग किया। इधर देखो अब महाभारत काल में आ जाओ, द्रौपदी के समय जयद्रथ यहीं पर उनका हरण किया ना, रथ में बैठा करके अकेले लेकर के भाग रहा है, और रजस्व स्थिति में दुर्योधन दुशासन उनके कपड़े हटा रहे हैं और नंगी करके उनके गोद में बैठाएंगे, उसके जंघे पर बैठाएंगे, किंतु पांडवों ने द्रौपदी जी को छोड़ दिया कि नहीं, छोड़ने की कोई कल्पना हो सकती है, बल्कि और प्रेम से उनको गले से लगा लिया, कभी ऐसा मालूम नहीं हुआ। कितनी बार ऐसे प्रसंग आए हैं जो द्रौपदी के इच्छा विरुद्ध असुरों ने, जयद्रथ इत्यादि असुर ही हैं, ये सब असुर ही हैं, दुर्योधन इत्यादि, यहां तक कि द्रौपदी के साथ में और बड़े बड़े राजन्य वर्ग शादी करना चाहते थे, कर्ण भी शादी करना चाहता था, सबकी उसकी नजर उन पर पड़ी थी, विशेषकर के स्वयंवर में, किंतु पांडवों ने इसके लिए छोड़ दिया। और भी एक कड़ी परीक्षा हुई, जब स्वयंवर में जीत लिया इन्होंने तो हकदार कौन थे शादी के? अर्जुन केवल मात्र, अर्जुन इत्यादि आकर के ये आकर के कहा कुंती मैया से, मैया आज भिक्षा एक बड़ी सुंदर मिली है, तो उन्होंने कहा ये जाओ मिल करके सभी बांट करके खा लो, बतलाओ स्त्री बांटने की चीज है ये कोई प्रसाद है ना क्या चीज है जो बांट करके खाएंगे, किंतु मैया के मुख से निकल गया। अर्जुन ने ये कहा जी मैं जीत कर लाया हूं, मैं ही इसका पति हूंगा, कहा नहीं कहा। कुंती जी को जब मालूम पड़ा तो बड़ी योगिया ने रोने लग गई, ये मैंने ये क्या कह दिया, किंतु अर्जुन ने कहा जो तुमने कही है वही हम मानेंगे चाहे जो कुछ भी हो। और लोगों की भी इच्छा नहीं थी, धर्मराज, भीम, नकुल, सहदेव, इनकी भी इच्छा नहीं थी, किंतु जो उनकी मैया से की इच्छा से, और कृष्ण ने इसका अनुमोदन किया जी हाँ ठीक है, किंतु किसी का प्रेम उनसे उसके द्वारा कम हुआ? द्रौपदी में कुछ ऐसे गुण थे, कुरुक्षेत्र में जब गई द्रौपदी जी और रानियां सब मिली तो रानियों ने पूछा उनसे अरे मैं हम लोग 16,108 महिषियां और कृष्ण का मन नहीं रख सकती, उनका मन कहाँ पड़ा रहता है? दूसरी जगह, और हमें एक एक से सुंदर, विश्व की सबसे सुंदरी स्त्रियां हैं, गुणवती हैं, रूपवती हैं, शीलवती हैं, पतिव्रता हैं, और कृष्ण का मन बांध करके नहीं रख सकते, एक कृष्ण, और तुम पांच पतियों के मन को बांध करके रखती है, राज्य शासन कौन चलाता है? पांडव लोग नहीं चलाते, ये द्रौपदी, द्रौपदी जैसा कहती है वैसा शासन चलता है, दान इत्यादि कौन देता है?
युधिष्ठिर महाराज जी को दान की समस्त चीजें उनको ठीक कर देती हैं और कहती हैं इनको ये दो, इनको ये दो, इनको सब खाने पीने में चौका बर्तन जो कुछ है सब इनके अधीन। सेनाएं लड़ेंगी और इसका व्यूह और ये सब कौन रचना करता था, ये सब कुछ द्रौपदी करती थी। बड़ी लड़ाकू वीर भी थी, सब विषय में योग्य और निपुण थी और सबसे बड़ी बात थी कृष्ण में एक निष्ठा उसकी भक्ति थी, प्रेम था। इसलिए पांडवों ने कभी नहीं सोचा जैसे उसको कोई ले गया है, हरण करके ले गया, क्या ले गया, चरित्र पर कभी भी संदेह नहीं हुआ। कृष्ण को भी उसके चरित्र पर कभी संदेह नहीं हुआ। इसलिए भारतीय महिलाओं में द्रौपदी का स्थान बहुत ऊंचा है। किंतु ये गोपियों की चरण की धूली अपने को समझने में मुश्किल है इनको, ऐसा समझो। इसलिए द्रौपदी जी का नमन करते हैं किंतु फिर भी गोपियां का जहां भाव है वहां पर विश्व में कोई भी उनके समानता नहीं हो सकती। इसलिए हम लोग गोपियों को यहां पर हम नमस्कार करके प्रणाम करके हम चलते हैं। ये महाराज युधिष्ठिर का कहते हैं कि यह राज सिंहासन था, यहीं पर उनकी सभा बैठती थी, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते थे, किंतु उस समय में ये महल नहीं था मेरे समझ से। इसलिए यदि महल उस समय में होता तो द्रौपदी एक साग के लिए तरसती और दुर्वासा ऋषि को उसी को खा करके कृष्ण और तृप्त हो जाते। इसलिए उनके समय में ये महल यदि होता तो राजवैद्य